शक्तित और निदाय की निदाय गौर प्रमाण समेत गौर भक्तबिंद की समेत गौर भक्तबिंद की समेत गौर भक्तबिंद की
मैया के पास आया करते थे, ये भाव था गोपियों के मन में।
मगर कंप्लेन यही हुआ करता था कि लाला ने माखन चुराता है। रानी जी, यशोदा जी, आपका जो लाला है ये हमारे घर में माखन चुराता है। भले ही इतने भी बहाना हो, मैया ने बोल रहे कि खिला दो, मगर माँ के मन में एक भाव होता है, क्या मेरे पुत्र को, मेरे संतान को मेरे घर की चीजों से मैं संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसके कारण मेरा पुत्र किसी दूसरे के घर में जाके दूसरे के घर की वस्तुओं को खाने में रुचि रखता है, ऐसे सोचने लगी मैया। ये इसलिए आज के दिन दिवाली के दिन मैया ने खुद यह सोचने लगी कि हमेशा ये मेरे जितने भी दासियां हैं इन लोगों ने माखन बनाते हैं और इस माखन को लाला को खिलाती हूँ, शायद इसके कारण शायद दासियों ने ध्यान पूर्वक नहीं बनाते होंगे, क्योंकि ये तो दासियां हैं ना, काम करने वाले हैं, काम करने वाले कभी भी मालिक की प्रसन्नता, मालिक जब जिस समय सामने रहता है उस समय ही बहुत ही ध्यान पूर्वक कार्य करते हैं, नहीं रहते हैं तो अपने मन गलत कार्य करते हैं। और मैया ने सोचने लगी होगी, सोची होगी कि ये तो मेरा पुत्र है, इन लोगों का तो पुत्र नहीं है ना, इसीलिए शायद इन लोगों ने ध्यान से माखन नहीं बनाते होंगे और उस माखन का स्वादिष्ट, उस माखन का स्वाद जो कि लाला को अच्छा नहीं लगता था, इसी कारण शायद लाला ने जाके दूसरे घर में माखन खाना चाहता है। भले ही गोपियों ने कहती थी कि हम लोग उसको चोरी नहीं, हम देते हैं तो भी नहीं खाता है, चोरी करके खाता है, उसको आदत पड़ चुका है कि चोरी करके खाने की, मैया ने यही सोची कि शायद मेरे पुत्र को मेरे घर की बनाए हुए माखन, मेरे घर के जो चीज़ें हैं और हम ठीक से उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण ही उसने माखन चुराने का। तो मेरे को चाहिए कि मेरे पुत्र को संतुष्ट रखने के लिए, मेरे इस लाला को तृप्त करने के लिए मैं अपने हाथों से स्वयं माखन बनाऊंगी, अपने हाथों से माखन बनाऊंगी और अच्छे गायों का दूध लेकर खुद उसको दही बनाऊंगी, दही में बिठाऊंगी और दही बनने के बाद खुद माखूंगी और खुद माखन बनाऊंगी और मेरे लाला को मैंने खिलाऊंगी, तब मेरे लाला ने दूसरे के घर में जाकर माखन चोरी नहीं करेगा। यह सोचकर मैया ने स्वयं दही मथने चली। कल हमने श्लोक को दोहराए थे, श्री शुक उवाच एकदा गृहवासीषु यशोदानंद गृहिणी कर्मांतरयुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि, निर्ममंथ स्वयं दधि, इसीलिए स्वयं माता यशोदा ने दधि मथना शुरू की। और भी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं गृहदासीषु कर्मांतरयुक्तासु, गृह की दासियों को यानी घर की नौकरानियों को कर्मांतर नियुक्त आसो, अन्य कामों में लगाकर, अन्य कामों में, अन्य कार्यों में लगाकर, नियुक्त आसो यानी लगाकर, माने स्वयं लगा दिया। अब स्वयं लगाई और अभी देखिए कि सारे गोपियों को मैंने काम में लगा चुकी हूँ और कोई गोपी बची नहीं है और कोई दासी नहीं बची है, तो मेरे को ही खुद ये माखन मथना पड़ेगा, दही मथना पड़ेगा, माखन बनाना पड़ेगा, ये भी एक कारण। सबको अन्य काम कौन से कार्य में लगा दी थी, देखिए राजा का घर है तो राजा के घर में तो बहुत सारे कार्य होंगे ही, स्वाभाविक है। इसके साथ साथ भी एक और विषय था कि आगे जाकर इंद्र की पूजा आने वाली थी, इंद्र का पूजा। आप लोगों को मालूम है ना कल जो है गोवर्धन पूजा है, ये गोवर्धन पूजा पहले नहीं था, इंद्र का पूजा था उस दिन। मगर लाला ने जब 7 साल के शायद उम्र के थे, 7 साल हुआ था शायद उनको भगवान को, तो उस समय ने अपने पिता को और ब्रजवासियों को भड़का कर और इंद्र की पूजा को बंद करा दिए और गोवर्धन जी का पूजा करके खुद ही सब प्रसाद को स्वीकार करने लगे, और तभी से आज तक हम लोग गोवर्धन जी का पूजा करते हैं। तो ये इंद्र का पूजा आने वाला था और इंद्र की पूजा के लिए बहुत बड़ा आयोजन की आवश्यकता हुआ करता था, अतः इसीलिए मैया ने सारे दासियों को, क्योंकि ये राजा का घर था, गोकुल के ग्वालों का राजा थे नंद बाबा और यशोदा मैया रानी थे, तो ये स्वाभाविक है कि सारे गोपियों में से सबसे ज्यादा प्रसाद राजा के घर से बनना चाहिए और सबसे ज्यादा इंतजाम राजा के घर से होना चाहिए, इसीलिए मैया ने सारे दासियों को इंद्र पूजा इंद्र जाल पूजा के लिए कार्य में लगा दिया, ताकि वो आटा पीसना, चावल को मिठाई इत्यादि बनाने के लिए इन सब इन सारे कार्यों में मैया को मैया ने अब दासियों को लगा दिया, कर्मांतर नियुक्ता से अन्य काम में लगा दिया ये कार्य को। और उस दिन की बात है, ये दाऊ जी, बलदेव जी और रोहिणी माता भी नहीं थे गोकुल में या नंद बाबा के घर। क्यों नहीं थे, कहाँ गए थे? क्योंकि रोहिणी माता जो है वो हेड मैनेजर थी उस पूजा की, यानी इस पूरे पूजा का देखभाल करने वाली थी, इसीलिए वो उपनंद घर उपनंद के घर में गई थी, ताकि देखने के लिए कि ठीक से सब पूजा इत्यादि का तैयारी हो रही है क्या नहीं, ये देखने के लिए। इसलिए बलराम और मैया रोहिणी जी नहीं थे वहां पे उस दिन दिवाली के दिन, ये लोग नहीं थे। मगर उस समय ब्रज में एक व्यक्ति थे, वो है कुंती महारानी। कुंती महारानी कभी गोकुल में थी, ये दाम बंधन लीला भगवान को बांधने का ये लीला को कुंती महारानी ने देखा था। हम आगे उस श्लोक को बताएंगे कैसे हमको पता लग रहा है कि कुंती महारानी थे। तो इस दिन है एकता दिवाली का दिन, गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु अन्य कार्यों में लगा दिया। नंद यशोदा नंद गृहिणी नंद महाराज की पत्नी या घर की गृहिणी यशोदा ने निर्ममंत्र स्वयं दधिमत के समय और क्या कर रही थी साथ साथ में, यानी यानी हकीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथन काले स्मरन्ति तान्य गायत। यानी यानी हो गीताने, प्रभुपाद जी उसका अनुवाद करते शब्दार्थ लिखते हैं, जो जो यानी यानी जो जो इस संबंध में गीताने तब बाल चरितानि, यानी भगवान की बाल लीलाओं को बाल चरित्रों को गाने के रूप में गान के रूप में संगीत के रूप में प्रयोग करके माता यशोदा ने अपने मुख से उच्चारण कर रही थी। कार्य क्या कर रही थी, दधी मत रही थी। दधी किस लिए मत रही थी, कि लाला ने अपने माखन से दासियों के द्वारा बनाया हुआ माखन से प्रसन्न नहीं होता है, इसीलिए मैं अपने स्वयं हाथों से दधी मथूंगी, जिसके द्वारा लाला को मैं प्रसन्न करूंगी, दूसरे के घर में लाला में माखन चोरी करने के लिए नहीं जाएंगे, ये भाव। इसलिए अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगाए थे कर्म, वो जो कर्म कर रही थी माता, कौन सा कर्म कर रही थी, भगवान की सेवा के लिए कर्मणा, कर्म के द्वारा भगवान की सेवा कर रही थी। मनता मन में क्या कर रही थी माता ने, मन में भगवान का बाल लीलाओं का स्मरण कर रही थी। दधि निर्मंथन काले स्मरण भी तान्य गायत, उन भगवान की बाल लीलाओं को स्मरण करती हुई गा रही थी। कैसे गा रही थी, पहले स्मरण कर रही थी, याद कर रही थी और उन गीतों को गा रही थी बाल लीलाओं को। मनसा कर्मणा हो गया, कर्म के द्वारा भगवान की सेवा। मनसा मनसा यानी मन के द्वारा भी भगवान का चिंतन कर रही थी। और रह गया वाचा, वाचों के द्वारा अपने वाणी के द्वारा भगवान की सेवा। कैसे वाणी के द्वारा कर रही थी, जिन सारे भगवान की बाल लीलाओं का वो स्मरण कर रही थी, उसी बाल लीलाओं को अपने मुख के द्वारा वाणी के द्वारा वो गान के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। तो यशोदा मैया ने यहाँ कर्मणा मनसा वाचा तीनों से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रही थी माता ने तीव्रता से। संपूर्ण मन कृष्ण की लीलाओं में बजा हुआ था, मन में बहुत ही तीव्र वात्सल्य भाव के कारण दधि को मत रही थी, बहुत ही प्यार से ध्यान पूर्वक, और बहुत ही सुबह का समय था, मंगल आरती का समय था, महाराज मंगल आरती में बहुत ही भोर दिया जलाई है सामने और भोर भोर दधि मत रही है, भोर भोर मत रही है। तो महाराज कहते हैं कि महाराज कहते हैं अगर दिन हो जाएगा तो कोई देख लेगा कि कोई गोपी और मेरे बालक इतना अच्छा माखन बना रही हूँ, और किसी का अगर नजर लग जाए तो मेरा पुत्र का पेट दर्द करेगा, तो इसलिए मैं सुबह बना लूंगी, कोई देखने से पहले। ऐसा भाव होते मैया, देखिए कैसा वात्सल्य प्रेम, ऐसा सोचकर मैया ने सुबह सुबह भोर ही लाला उठने से पहले भीतर छोड़कर दीप जलाकर दधि मथनी में दही कैसे मथा जाता है? एक बहुत बड़ा सा मटका हुआ करता है, उसके अंदर दही रहता है और इस मटके में एक डंडा रहता है, उस डंडे के और एक दूसरा डंडा के साथ इस डंडे को कनेक्ट किया हुआ रहता है और इस छोटे से डंडे में और एक रस्सी रहता है, एक राउंड घुमाकर उसको दो हाथ से ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे खींचते हैं। तो वो जो बीच वाला जो दही मटके के अंदर जो डंडा है वो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसा घूमने से दही मथता है। आजकल तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया है, ऐसे मथने के लिए मशीन ही आती है इलेक्ट्रॉनिक का, वो दही के अंदर रख देते हैं, स्विच दबा देते हैं तो अंदर दूध करके बना देता है ना, मगर उस समय ऐसा नहीं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों से खाद्य पदार्थ बनाते हैं उस सबका स्वाद मिट जाता है, स्वाद नहीं होता है। हमने इसका एहसास भी किया है, पहले पहले लकड़ी की चूल्हा से धुआं निकल रहा है, काला पड़ रहा है, खाद्य पदार्थ बनाते थे और कुछ दिनों के बाद हमारे ही यानी जब थे हम घर में तो उस समय फिर प्रेशर कुकर गैस इत्यादि आया था तो बाद में उस सबका स्वाद ही मिल गया, उस प्रकार का स्वाद नहीं मिलता। अगर गांव में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अभी भी स्वाद है करके, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज आ गए। तो इस प्रकार से दधी को माता मत रही थी, अपने हाथों में दोनों रस्सी लेते हुए रस्सी को खींचते हुए दधी मत रही थी। मतने के साथ साथ कर्मणा मनसा वाचा तीनों से भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही थी। किस प्रकार से भक्ति कर रही थी? भगवान की बाल लीलाओं को स्मरण और भगवान की बाल लीलाओं को गान कर रही थी। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने मानो कि सुखदेव गोस्वामी बाजू में खड़ा होकर देख रहे हैं, ऐसा सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि गीत गा रही, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी बाजू में खड़ा रहकर सुन रहे हैं और अभी जो श्लोक आ रहा है जैसे कि मानो सुखदेव गोस्वामी वहां सामने रहकर देख रहे हैं और उसको देख के प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसा श्लोक है? शोमम बासह कुछ कटिकटे बिभ्रति सूत्र नाथम पुत्र स्नेह स्मृत कुछ सुखम जातुकम पंच शुभ्रो रज्जा कर्ष श्रम भुजस कंकणं कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कवरविगलं मालति निर्मन्थम्। कहते हैं शौमं वासः कुतुकटिकटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। शौमं वासः, अभी सुखदेव गोस्वामी ने माँ यशोदा की सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान की माँ है भाई और उनका तो सौंदर्य का तो वर्णन करना ही चाहिए। भगवान इतना सुंदर है और जिनके पेट से या जिनका पुत्र है भगवान, उनका तो सौंदर्य का वर्णन का आवश्यकता है ही। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ तो कहते हैं कि माँ की सौंदर्य का कैसे था, क्या पहनी थी वो। शमम बासह, शमम बासह, शमम शब्द यूज करते हैं रेशमी कपड़ों के लिए, रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़ों के लिए। रूपा जी ने अनुवाद करते हैं केसरिया, केसरिया केसरी कलर की तथा पीला मिश्रित, उसको क्षमम सब जो है रेशमी कपड़ों के लिए भी यूज किया जाता है। रेशमी कपड़ा पहनी थी, जो गोपी का ड्रेस होता है गोकुल में पहनते हैं गोपी लोग, इस प्रकार से कपड़ा था। कोई कोई भक्त लोग भाव देते हैं कि रेशमी कपड़ा क्यों पहनी थी माँ ने, क्योंकि जो रेशमी कपड़ा होता है जो पहनने से किसी भी प्रकार का अशुद्ध नहीं होता है, जो जैसे कि किसी अशुद्ध अवस्था में कोई स्वस्थ किया हो तो शरीर अशुद्ध हो जाता है, तो रेशमी कपड़ा पहनने से इस प्रकार के अशुद्ध या अशुद्ध परिस्थिति नहीं होता है। इसीलिए माँ ने शुद्ध ताजा माथन प्रस्तुत करने के लिए बनाने के लिए रेशमी कपड़ा पहनी थी। पृथु कटिकते बिभ्रति सूत्र नद्धम, अपने कमरे में कमर में सूत्र नद्धम, सूत्र अर्थात धागा और नीचे का और जो रंगा होता है उसको धागे से बहुत जोर से बांधा था ताकि कार्य करते समय कोई दिक्कत ना हो। पुत्र स्नेह स्मृत कुछ जुगम जात कंपम च शुभ्र। और क्या हो रहा था? पुत्र स्नेह, पुत्र स्नेह के कारण स्नोत उनकी तनों से दूध चू रहा था। इतना वात्सल्य प्रेम था मैया के पास कि अपने लाला की लीलाओं पर अपने पुत्र की लीलाओं में इतना मग्न हो गई थी, इतना पुत्र स्नेह जात हो रहा था उनके हृदय में कि अपने स्तनों से मैया के स्तनों से दूध चू रहा था और इतना दूध चू रहा था कि दूध चूते चूते मैया के वस्त्र सब भीग जा रहे थे, इतना दूध चू रहा था मैया के स्तनों से। और तब क्या हो रहा था, पुत्र स्नेह जातकम्पम, यानी उसके साथ साथ स्तनों से दूध चूने के साथ साथ स्तन जो है कंपन हो रहे थे, कांप रहे थे स्तन। आचार्य लोग कहते हैं क्यों स्तन कांप रहे हैं, अपना भाव को व्यक्त करते हैं, मैया के स्तन क्यों कांप रहे हैं। पहली बात तो यह है, साधारण बात है, मैया ने दोनों हाथों से मथनी को लेकर गदी मत रही है तो यह स्वाभाविक है क्योंकि पूरे शरीर के साथ स्तन कांपना स्वाभाविक है। फिर भी भक्तों ने अपना भाव को व्यक्त करते हैं कि जो दोनों स्तन है ये घबरा रहे थे, घबरा कर कांप रहे थे। क्या घबरा रहे थे, क्यों घबरा रहे थे, ये सोच रहे थे अरे मैया में सुबह सुबह इतना मेहनत करके इतना अच्छा माखन बना रही है और लाला ने तो जैसे ही उठेगा ये माखन खा के अपना उधर भर लेगा और माखन खा के उधर भर लेगा तो फिर हमारा क्या काम है, हमको ये नेग्लेक्ट कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, हमको पान करेंगे ही नहीं, तन पान करेंगे नहीं लाला ने कि माखन खिला देगी क्योंकि इतना अच्छा माखन बना रही है। माखन अच्छा माखन, पहली बात तो मैया ध्यान से बना रही थी। विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर कहते हैं नंद बाबा की 9 लाख गायों में से कुछ स्पेशल गाय हुआ करते थे, ये गाय घर की हर एक घास को नहीं खाते हैं, कुछ ऐसे घास हुआ करता है जिससे सुगंध निकलता है उस घास को खाते हैं और उसमें से कुछ गायों का कुछ 100 गाय के दूधों को दूध और फिर कुछ गायों को खिलाते हैं। इस प्रकार से तो ध्यान से हट गया तो इस प्रकार से पूरा निचोड़ा हुआ सार रूपक एक पद्मिनी जातीय गाय को उसको कहते हैं, उस गाय के दूध को माँ ने बहुत ही अच्छे से रात को निकाल कर उसको दही मिठाई थी और उस गाय के दूध से जो दही और माखन बनता है अत्यंत स्वादिष्ट रहेगा और इसीलिए इस स्तन में रहने वाली दूध और स्तन सोच रहे थे कि भगवान में अगर उठेंगे तो मैया का माखन खा लेंगे तो हमारे प्रति ध्यान नहीं देंगे तो हम कैसे सेवा करें भगवान की, यह सोचकर वो घबरा रहे थे। कैसे भक्तों का भाव देखिए, पुत्र स्नेहम सुनकर सुन और ये भाव और दूध क्यों चू रहा था, दूध बाहर क्यों निकल रहा था स्तनों से, क्योंकि मानो दूध बाहर निकलकर मैया को कहना चाहते थे कि मैया आपको मक्खन इतना ध्यान पूर्वक बनाने की क्या आवश्यकता, हम है ना लाला की पेट भरने के लिए, लाला की सेवा करने के लिए, कान्हा की सेवा करने के लिए हम है ना, आप क्यों इतना मेहनत कर रही है सुबह सुबह माखन बनाने के, वो बाहर निकल रहे थे ताकि बाहर निकले और मैया को पता लगे कि हाँ मेरा दूध भी है, लाला दूध भी कुछ देर पी सकता है, ऐसे सोचकर मैया माखन नहीं बनाएगी तो लाला ने हमारा दूध पिएगा, ऐसे सोच रहे थे जो ये सोचकर दूध बाहर निकल रहे थे। पुत्र स्नेह कुछ जात कंपन कंपन हो रहे थे और क्या था, सुभ्रु अर्थात भवे ऊपरी भाग, सु अर्थात अत्यंत सुंदर, मैया की भवे जो दृष्टि आंख के ऊपर वाले भवे कैसा थे, अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। जैसे कि मान लीजिए सुदेव बच्चन में वहां रहकर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं इस चीजों को और क्या हो रहा है, रज्जा कस श्रम भुज तलत कंकड़ो कुंडले च, रज्जाकर्ष रज्जु आकर्ष इस सबसे रज्जाकर्ष होता है, रज्जु आकर्ष का अर्थ होता है रज्ज, रज्जु रज्जु का अर्थ होता है रस्सी, रस्सी को रज्जु कहते हैं, आकर्ष करता है उसको कर्षण करना यानी खींचना, क्यों रस्सी को खींच रही थी, क्योंकि गदी मत रही थी, गदी मत के समय यही कार्य होता है कि रस्सी को खींचना, रज्जाकर्ष उस समय क्या हो रहा था, रस्सी को खींचने के कारण दोनों हाथ चल रहे थे तो दोनों हाथ जब भी चल रहे थे दोनों हाथ में मैया ने कंकन पहनी थी चूड़ियां और ये चूड़ियां जो है झनझन झनझन आवाज कर रही थी। उसके साथ और क्या हो रहा था, मैया के कान में कुंडल पहनी थी, बहुत ही सुंदर कुंडल, ये कुंडल हिलते डुलते रहते थे, गाल में लगते थे, क्यों कंकन झनझन कर रही थी, कहते हैं कि कंकण जो है अति प्रसन्न थी, अपने आप को बहुत ही सौभाग्य मानते थे ये कंकड़। हमारा कितना सौभाग्य है कि हम इस प्रकार की माँ के हाथों में हैं, जो कि इन हाथों को उसने भगवान कृष्ण की सेवा में लगाई है। भगवान कृष्ण की सेवा में जो हाथ लगे हुए हैं, उस हाथ में हम हैं। इसलिए हम कितने सौभाग्य है। और जब व्यक्ति बहुत आनंद में आता है तो गान बजान करता है। इसलिए ये कंकण जैसे आनंद में विभोर हो जाते थे, अपने सौभाग्य को याद करते थे, उस समय एक दूसरे से टकराकर मानो को कीर्तन कर रहे हैं, रुंझुन रुंझुन आवाज करके कंकण यानी चूड़िया कीर्तन कर रहे हैं कि हमारा कितना सौभाग्य है, भगवान राम कृष्ण की सेवा जो हाथ कर रहे हैं, हम उन हाथों में है, ऐसा चूड़िया सोच रही है। कुंडल ऐसा कुंडल भी इनसे ढूंढते हैं। कौन से कुंडल? कान में पहुंचने वाले कुंडल। क्यों हिल रहे हैं ये? हिलते डुलते हैं, नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? आनंद के मारे। क्यों आनंद है इनको? क्योंकि ये कुंडल सोच रहे हैं कि हमारा कितना सौभाग्य है कि भगवान की गुणगान जिन कान सुन रहा है, हम उस कान में हैं। हम लोगों को भी इसी प्रकार से आनंद से नाचना चाहिए। क्यों नाचना चाहिए? हमारा सौभाग्य को देखकर। हमारा क्या सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जैसे भक्तों का संगति मिला है, उनके छत्र छाया में हम लोग हैं। इसलिए हम लोगों को भी हर समय अपने पुराने स्थिति को याद करते हुए, इस अभी की स्थिति को याद करते हुए अपने आप को गर्वित मानना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की कृपा वह संभव उनके छत्र छाया में है। जैसे कि कुंडल एकदम का ये सब भक्त की संगति करने के द्वारा, भक्त की अंग का स्वच्छ करने के कारण कितने आनंदित हो रहे हैं। कुंडल भी मानो नाच रहे हैं, ऐसा आचार्य लोग वर्णन करते हैं, मानो कुंडल भी नाच रहे हैं। क्योंकि मैया भी सुन रही थी, कैसे मैया सोच भी रही थी और गा रही थी, और जो गा रही थी उसको सुन भी रही थी ना, तो कृष्ण का गुणगान तो सुन रही थी। इसीलिए जिन कानों में कृष्ण की गुणगान को श्रवण करते हैं, तो उन कानों में ये कुंडल है। इसीलिए ये कुंडल क्या कर रहे थे? अपने आप को बहुत सौभाग्य मान रहे थे। इसलिए भक्तों का संगति करने से अपने आप को बहुत ही आनंद मानना चाहिए, और हमेशा अपने आप को भक्तों की संगति में रखें, ऐसा सिचुएशन बना रखना चाहिए। अपने कार्यों को, अपने दिन भर दिनचर्या को ऐसे बनाना चाहिए कि कैसे मेरे को समय मिल जाए कि भगवान के, मैं भक्तों के संगत में रहूं, प्रभुपाद जी के आश्रय में रहूं कितना ज्यादा देर, इस प्रकार का भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, तब जाके हमको कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। और क्या? स्वर्णम वक्रम कवर विगलित मालति निर्ममंथ। स्वर्णम स्वर्ण सुखदेव गोस्वामी का कहना है कि मैया सुबह सुबह श्रम कर रही थी, भले ही ठंडी शुरू हो गया रहेगा, कार्तिक का महीना है, दिवाली का समय है, माताएं बच्चों को संभाल रही है, पुत्र से स्नेह रहना चाहिए, तो मैया ने सुबह सुबह मेहनत कर रही थी। सुबह का समय था, सुबह सुबह मेहनत करने के कारण उनके शरीर में, मुखमंडल में श्रम बिंदु का अर्थ होता है पसीने का बिंदु चारों तरफ छूटा था, मानो कि मोतियों का ढेर कोई लेके मैया के मुंह को सजाया है, ऐसा दिख रहा था। दीप जल रही थी, ये दीप की आलोक पड़ रहा था प्रकाश, और मैया के चेहरे में, मैया की माथे पे श्रम बिंदु का अर्थ पसीना ऐसे ऐसे था, और ये जैसे कि मोतियों जैसा झलक रहा था। इस प्रकार के कबर बिगड़ का मालती निर्मम मालती, मैया ने अपने केस में, बाल में उन्होंने मालती का फूल लगाए थे। यहाँ तो नहीं दिखते हैं, ज्यादातर साउथ इंडिया साइड में माताएं बहुत ज्यादा फूल लगाते हैं केस में, पूरा केस का गुच्छा बनाकर बहुत लंबा बनाते हैं। हम लोग भगवान को जितना यूज करते हैं, वहां पर अपने एक जन अपने शरीर में इतना लगाते हैं, उधर फूल का व्यापार ज्यादा होता है साउथ इंडिया साइड, माताएं लगाते हैं। तो मैया ने अपने बाल में मालती का फूल लगाए थे, और मालती का फूल क्या हो रहा था, मैया दधी मथने के कारण शरीर हिल रहा है, और शरीर हिलने के कारण ऐसे ऐसे करके वो दधी मथ रही थी, तो ये फूल जो है गिरकर नीचे पड़ रही थी,
और उस पर भी कुछ कहते हैं भक्त लोग कि ये फूल क्यों गिर रहे थे, क्योंकि ये फूल सोच रहे थे हमारा योग्यता नहीं है कि इस प्रकार की कर्मणा मनसा वाचा कि वाचा से भगवान की सेवा करने वाली माता, सेवा करने वाली गोपी और कृष्ण की वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा जो है उसकी सिर में रहने जैसा योग्यता हमारे पास नहीं है। हम तो थर्ड क्लास फूल है, हमारा ऐसा कौन सी योग्यता है कि इस प्रकार की भगवान की माँ के माथे में रहने हम, हमारा माथे में रहने का योग्यता नहीं है। हमारा योग्यता तो इस प्रकार की माँ के चरणों में, और ये सोचकर माथे की लगाया हुआ फूल जो है झड़कर माँ के चरणों में गिर रहे हैं, ऐसा मालती का फूल सोच रहा है। ये सब सुनकर कोई सोच रहा है अरे आप क्या बताते हो, फूल ऐसा सोचता है, कंकण ऐसा सोचता है, कुंडल ऐसा कभी सोच सकता है क्या, इनका ज्ञान होता है? हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु का जो है चेतन होता है, यानी जीवन होता है, हर एक वस्तु का, हर एक पदार्थ का जीवन होता है। जैसे कि सुबह अगर जिन जिन लोगों ने कथा सुना महाराज के मुखारविंद से, तो महाराज बता रहे थे कि आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु हर एक पदार्थ चेतन हुआ करता है, उनका जान रहता है। इसीलिए ये लोग ऐसा सोच रहा कोई गलत नहीं, ये केवल भाव ही नहीं है भक्तों का या आचार्यों का, ये सत्य है, ऐसा सोच सकते हैं। और वहाँ पे जो चरना गाना इत्यादि ये स्वाभाविक है, वहाँ पे कोई बोलता है तो गान की सदृश है, कोई चलता है वो नाट्य के बराबर है, डांस के बराबर है। ब्रह्म समय तो आप लोग सुना होंगे कथा गानम गमनम अपि नाट्यम, ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार से। तो ये आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु चिन्मय होते हैं, तो ये केवल भाव ही नहीं, क्या भाव में अंधे होकर ऐसा नहीं करते हैं, ये सत्यता है, ऐसा सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा सोच सकते हैं हर एक वस्तु आध्यात्मिक जगत में। हमारे यहाँ पे जो भी जड़ वस्तु दिखते हैं जिसका जीवन नहीं है, आध्यात्मिक जीवन जगत में हर एक वस्तु का जड़ वस्तु का जीवन पे जड़ नहीं होता है, हर एक वस्तु चेतन होता है। इसीलिए ये सारे वस्तुएं कंकण कुंडल फूल दूध ये सब ऐसा सोच सकते हैं। जब यशोदा दधिमत रही थी तो उनका स्तन पान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनके दिव्य आनंद की बढ़ाने के लिए उन्होंने मथनी पकड़ ली और दधिमत ने से उन्हें रोक लगा दिए। तो अभी क्या हुआ, माँ का स्थिति बताई इस प्रकार से, मैया यशोदा ने दधिमत रही है और दधिमत के समय इस समय क्या हुआ कि अभी लाला का नींद खुल गया, और अभी लाला का नींद खुला, बच्चों का नींद खुलेगा तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे किधर है मेरा माँ, बाजू में नहीं है, मैया रहे सोई करती थी कि काना तो जगह, पहले उठ के अपना कार्य करने के बाद भी वो जाके लाला को उठने के समय उनके पास रहती थी, तो लाला ने उठ के देखा कि मैया नहीं है बाजू में, ये बच्चों का लालच होता है कि उठने पे ही मैया को ढूंढना, माँ को ढूंढना और माँ के दूध पीने का काम ना करना। तो लाला उठे और लाला उठे तो देखे बाजू में मैया नहीं है, और नीचे उतरे पलंग से उतर कर इधर उधर देखने लगे कहाँ गई, तो दूर से दीपक का प्रकाश आ रहा था और देखे तो वहाँ पे दधी मत रही है और लाला वहाँ पे चले। कैसे चले, चले उनके आंखों को मचते हुए करते हुए, कुछ बच्चों का ऐसा आदत होता है उठने से ही रोएंगे, और कुछ होते हैं रोएंगे नहीं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उठने से ही रोएंगे, वहां नहीं रहेगा, उठे और आंखों को मचते हुए करते हुए अपनी मैया के पास गए होंगे। और जाकर क्या किए, उन्होंने जाकर मैया के पास खड़े होके आंख मच रहे हैं, कर रहे हैं, बोलते होंगे पीऊंगा दूध पीऊंगा दूध पीला ऐसे बोलते होंगे, मगर मैया सुन नहीं रही है, अपना दधि मत रही है और उसको देख रही है और दधि मत रही है, यानी मैया सोच रही है, कभी कभी माँ से सोचते देखते हैं अभी ये क्या करेगा, मैया भी सोच रही है देखता हूँ क्या करेगा अभी ये, तो देखे मैया सुन नहीं रही है, तो तुरंत क्या किए, और दधि मथनी थी जिसके जिस रगड़े से मत रही थी माँ ने उसको पकड़ लिया, दधि मथनी को पकड़ लिया, गृहित्वा दधि मंथन, गृहित्वा का अर्थ होता है पकड़ना, दधि मंथन जिसके द्वारा दधि का मथा करना है, लकड़ी घूमने वाली लकड़ी को पकड़ना, और पकड़ माँ ने कुछ किया नहीं और माँ ने ये कार्य बंद कर दिया, अपना जो दधि मथने का कार्य है उसको छोड़ दिया, दधि मथने का कार्य छोड़ दिया। तो इसके ऊपर बहुत सारे भक्तों ने अपना अपना भाव व्यक्त करते हैं और कहते हैं भगवान रोक क्यों लगाए। उस समय कहते हैं भगवान रोक क्यों लगाए, मैया के कार्यों में बाधा क्यों डाले। भगवान का ये भाव था, भगवान ये कहना चाहते थे या ये प्रकाश करना चाहते थे, अरे मैं जिसको प्राप्त हो चुका हूँ उसको ऐसा मथने की क्या आवश्यकता है, मंथन करने की क्या आवश्यकता है, मैं तो प्राप्त हो चुका हूँ ना, मेरे को प्राप्त करने के लिए मंथन की आवश्यकता है। मंथन का और एक अर्थ भी होता है शास्त्रों को बहुत ही पढ़ना, अध्ययन करना, शास्त्रों को अध्ययन करना, शास्त्रों को मंथना कहते हैं तो जो लोग ज्ञानी लोग होते हैं शास्त्रों को, मैं शास्त्रों को मंथन कर रहा हूँ यानी निचोड़ निकाल रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ जो से ऐसा कहते हैं। तो उस लोग कहते हैं कि अरे भगवान का भाव ऐसा था कि मैं तो अभी प्राप्त हो चुका हूँ, वो लोग छोड़ कर मैं आ चुका हूँ तुम्हारे पास, और फिर भी तुमको मंथन कर मंथन करने की क्या आवश्यकता है, अभी बस करो तुम्हारा मंथन, ऐसा करके ऐसे सोचकर मैया की मथनी को पकड़ लिए भगवान ने। फिर भगवान सोच रहे थे कि अरे वास है कि अभी मैं जिसको प्राप्त हो चुका हूँ उसको किसी भी प्रकार की कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, अगर व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्राप्त हो गया हूँ एक बार तो उसको कर्मों को त्याग भी देगा, अपने नियत कर्मों को जो स्वयं ड्यूटी को अगर छोड़ भी देगा व्यक्ति तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब तक भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं हम, तब तक हमको हमारे नियत कर्मों को करना पड़ेगा, वर्णाश्रम के अनुसार ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थों को अपना अपना नियत कर्मों को करना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान एक जगह कहते हैं तीसरे अध्याय में, यस्तास्म रति रैव स्यादात्म तृप्तस्य मानव आत्मनैव च संतुष्टस्तस्य कार्यं विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसके जीवन आत्म साक्षात्कार की युक्त है और जो अपने ही पूर्णतः संतुष्ट है, तो इस प्रकार व्यक्ति के लिए कोई करणीय यानी कर्तव्य नहीं रह जाता, कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहता है, घर का हो बाहर का हो नौकरी हो घर की जिम्मेदारी हो कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहता तो जिस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो चुका है। तो भगवान का यहाँ पे भाव था कि मैं तो प्राप्त हो चुका हूँ ना, मैं तो तुम्हारे पुत्र के रूप में आ गया हूँ, और भी तुम क्यों परिश्रम कर रही हो, अभी परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर ये जो भक्त होते हैं अगर जो भगवान को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर दिए हैं अपने काम, तो उन्होंने अपने नियत कर्मों को त्याग देते हैं। श्री माधवेंद्र पुरीपाद की एक कथा से भी पता लगता है, संध्या वंदनम भद्रमस्तु भवे तमो स्नान तुभ्यम नमो भवदेव पितरस्तु तरणा दिव्यो नाहम क्षमा क्षम्यताम तत्र क्याति निश्चयति यद् बुकुले तस्य कंसं जुषः स्मारमधं हरामि तत् रं मन्ये किमन्ये मे। हे मेरे नित्री कार्य में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि स्नान और देव पितृगण इत्यादियों को मैं इस प्रकार के नियत कार्य को अभी नहीं कर पाऊंगा, मेरे को क्षमा कीजिए, अब तो यहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हता कृष्ण के स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण के स्मरण कर रहा हूँ, इस प्रकार की भक्ति मेरे को प्राप्त हो चुका है, इसीलिए मेरे को कोई नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, या मैं आप लोगों को माफ क्षमा प्रार्थना करता हूँ, मैं ये सब नहीं कर पाऊँ माधव मित्र पर कहते। तो यहाँ पे भगवान का भाव है, अगर एक बार भगवत प्राप्ति हो चुका किसी को, कृष्ण मिल गए, तो उसके बाद कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भाव देते हैं आचार्य लोग कहते हैं। भगवान सो के क्यों उठे, क्योंकि अभी देखें अगर भगवान आराम से सोए हैं और कोई भगवान का भक्त इतना परिश्रम कर रहा है, अपना कर्मणा मनसा वाचे के द्वारा भगवान का भजन और चिंतन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, सुबह सुबह पसीना छूट रहा है भगवान के लिए, तो भगवान कैसे सो सकते हैं, इतने दयालु भगवान। जो भगवान एक राक्षसी ने अपने सर में कालकूट नामक विष लगाकर आने पर भी उसको दयावश अपना माँ का पदवी दे दिया, और स्वयं माँ यशोदा ने इतना परिश्रम कर रहे हैं, वो कैसे सो सकते हैं चैन से, उठने के लिए बाध्य हो गए, नहीं नहीं मेरे को उठकर अभी जाना पड़ेगा, मैया कितना मेहनत कर रही है, यह सोचकर लाला ने कूद कर आए। उठकर आकर मैया कुमती को पकड़ लिया।
अभी तुमको मंथन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे को अभी भूख लगा है, तुमने दूध पिला, यह कहना समझा।
असली बात यह है कि मेरे को अभी भूख लगा है, तुमने मेरे को दूध पिला। तो मैया की गोद में चढ़ गए, मैया की गोद में चढ़ के अपना दूध पीने के लिए।
तो मैया की गोद में चढ़े, कैसे दूध पीने लगे?
ताम स्तन्य काम, ताम यानी उनको माता यशोदा को आनंद देते हुए, आनंद देते हुए प्रीतिमा बहन, प्रीतिमा बहन का अर्थ होता है प्रीति को लाते हुए, आवाहन का अर्थ होता है बुलाना या लाना, प्रीति का अर्थ होता है स्नेह या प्रीति। भगवान ने कैसे आए? प्रीति को यानी स्नेह को साथ में लाए, प्रीति को साथ में लाए। कहाँ लाए? यानी ताम, ताम यानी माता यशोदा के पास लाकर क्या किए? भगवान को हुआ स्तन्य काम। काम का अर्थ होता है कामना, काम का अर्थ ये भौतिक काम या काम वासना को नहीं समझना चाहिए। काम का अर्थ होता है कामना। स्तन्य काम का अर्थ होता है स्तन से निकलने वाली दूध की कामना, जैसे कि वन में मिलने वाला पदार्थों को वन्य कहते हैं, पशुओं को वन्य वन्य समझते हैं ना, वन में मिलने वाला वस्तु वन्य, उसी प्रकार से स्तन से निकलने वाली वस्तु को स्तन्य। स्तन्य का अर्थ यहाँ पे स्तन से क्या निकल रहा है? दूध निकल रहा है। तो दूध की कामना हुआ, कामना, काम का अर्थ होता है कामना, इच्छा, काम हुआ, भगवान को कामना हुआ, काम, स्तन्य काम। असाध्य मथनंती जनने मरी, मथती हुई जन के ऊपर चढ़े और प्रीतिमा बहन प्रीति के साथ माँ के दूध पीने लगे या मैया ने अपना दूध को पिलाने लगी। यहाँ पे देखिए कहते कि भगवान को काम आया। ये काम और क्रोध किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। कामे सब क्रोधे सब रजोगुण समुद्र। फिर आगे देखेंगे क्रोध भी आएगा धीरे धीरे। कहते कहते जिसको काम आया उसको क्रोध तो जरूर आएगा ही, क्योंकि क्रोध जो है ये काम का अनुज है यानी छोटा भाई है, इसके साथ साथ आएगा ही, आगे वो आएगा। तो इस प्रकार से माँ के गोद में चढ़े, माँ के स्तनों को पीना शुरू कर दिए। माँ ने बहुत ही स्नेह पूर्वक बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया। तमं कमारुण अपाय स्तनम स्नेह सुतम शिक्षति स्नेह स्नेह सुतम समित सस्मितामिच्छति मुखम अकृत्यमुसृज्यजतेन सायया भुषीयमानेन पश्यसि तदिश्रिते। अभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तब माता यशोदा ने कृष्ण के गले लगाया, उन्हें अपनी गोद में बिठाया और बड़े ही स्नेह से भगवान के मुख को देखने लगी। अगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि अब ऊपर रखी हुई कढ़ाई से दूध उबल रहा है, तब गिर रहा है, तब माँ ने पुत्र को छोड़कर दूध बचाने के लिए गई। तो अभी इस समय क्या हुआ? माँ ने पुत्र को अपने गोद में लिया, गोद में लेकर पुत्र को अपना दूध पिलाने लगी। कैसे पिलाने लगी? बहुत ही स्नेह से पिलाने लगी। किस प्रकार के दूध को पिलाने लगी? पुत्र स्नेह के द्वारा स्तन से जो दूध उबर आ रहा था यानी चू रहा था, इस दूध को पिलाने लगी। ऐसा दूध था माता यशोदा का, स्तनों का दूध। ये भगवान श्री कृष्ण पीते जा रहे थे, पीते जा रहे थे, पीते जा रहे थे, मैया के स्तन का दूध खत्म होने के नाम ही नहीं था, क्योंकि ये चिन्मय जगत है, यहाँ पे कोई भी चीज का अंत नहीं होता है, अनंत है। इसलिए मैया के स्तन का दूध है खत्म होने के नाम नहीं ले रहा था और भगवान की कामना यानी तृप्त होने का भी नाम नहीं ले रहे थे, वो भी अतृप्त थे, पीते ही जा रहे थे, पीते ही जा रहे थे। इस प्रकार की स्थिति को देखकर, इस प्रकार की स्थिति को देखकर ये जो चूल्हे में रखा हुआ दूध वो बहुत गर्म हो गया है, गर्म हो गया तो ये स्वाभाविक है, दूध ज्यादा उबालने से, बहुत गर्म होने से ये उफान आ जाएगा दूध में। तो उस समय ये चूल्हे में रखा हुआ दूध उफान है, तो उस समय चूल्हे में भी मैया ने दूध बिठाया, क्योंकि बहुत बार ही उस पद्मकन्या नामक गाय का दूध दूकर वो चूल्हे में बिठाकर उसको गर्म भी कर रही थी, ताकि कोई ना देखे, सुबह सुबह में कर लूंगी काम, निपटा लूंगी सब लोग उठने से पहले, और उसको दूध को देखते देखते इधर दधी भी मथ रही थी, वो सोच रही थी दूध उबल जाएगा, उबल जाएगा तो मैं जाकर उसको उतारूंगी। और इस बीच में लाला आ गए और हर्ट करने लगे कि मेरे को दूध पिलाओ, और मैया की गोद में चढ़ गए, और चढ़ने के कारण मैया ने बहुत ही स्नेह से अपने पुत्र को दूध पिलाए, और दूध पिला रहे इस स्नेह के कारण तो ये दूध खत्म नहीं हो रहा है और मैया लाला भी तृप्त नहीं हो रहा है, वो भी पीते जा रहा है पीते जा रहा है, और दूध भी खत्म होने का नाम नहीं लेता है। इस प्रकार की माँ और बेटे का स्थिति देख कर वहाँ पे दूध उगो दूध जो है दूध में उफान आने, दूध में क्यों उफान आया सुबह भी महाराज का बतला रहे थे। दूध सोच रहे लगा, अरे ये माँ ने दूध पिला रही है लाला को तो पिला ही रही है इतना देर तक, और लाला अभी तक पी रहे हैं, पीते पीते इतना दूध पी रहे हैं और भी दूध पी रहे हैं तो उनका भूख जो है वो मिट जाएगा, और मिट जाएगा उसके बाद हमको नहीं पिएंगे, अगर हमको नहीं पिएंगे लाला, हाँ लाला नहीं पिएंगे तो हमको इतना तप करने की क्या आवश्यकता है। तप करने का मतलब दूध उबल रहा था ना, उबल रहा था मतलब तप्त हो रहा था, तप करके गर्म होना उबलना तप्त हो रहा था, ये तप्त को तप के रूप में लेकर दूध सोच रहा है कि हमको इतना तप करने की क्या आवश्यकता है। अगर लाला ने माँ के दूध को पीकर तो संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर हमको नहीं पिएंगे, हमको नहीं पिएंगे तो हमको इतना तप करने की क्या आवश्यकता है, और हमको नहीं पिएंगे तो हम रह के क्या फायदा है। यह सोचकर ये दूध जो है पीने में उफान आया, उफान क्यों आया ऐसे सोचते सोचते हाँ दूध को बहुत ही दुख हुआ, और व्यक्ति को अभी जब भी बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव होता है दुख आता है तो अभी वो सहन नहीं कर पाता है, वो एक ही रास्ता चुनता है कि आत्महत्या, इतना दुख होता है इतना दुख होता है कि वो सोचता है कि मेरे लिए अभी मृत्यु ही श्रेयस्कर है, और ये जो दुख है मृत्यु से भी बढ़कर है, अभी मैं मर जाऊंगा तो इस प्रकार के दुख से बच सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति सोचने लग जाता है। तो ये दूध अभी देखी कि लाला दूध पी रहे हैं छोड़ने के नाम नहीं ले रहे हैं, और मैया पिलाती जा रही है, और हमको तब कर इतना जम रहे हैं इतना जम रहे हैं इतना तब कर रहे हैं, मगर कोई फायदा नहीं होगा कि लाला पिएंगे नहीं हमको, इससे बेहतर यही होगा कि हम लोग उफान आकर चूल्हे में घुसकर आत्महत्या कर ले आग में, हमारा अस्तित्व भी मिटा लें, ऐसा दूध सोचने लगा। देखिए हम जिस वस्तुओं को यहाँ पे जड़ समझते हैं वहां पे उस वस्तुओं का भक्ति, दूध सोचने लगा मैया लाला नहीं पिएगा तो मैं आत्महत्या करूंगा, यह सोचकर चूल्हे में उफान आया, दूध में उफान आया, उफान आके चूल्हे में घुसने ही वाला था, तब माँ का नजर पड़ गया दूध के ऊपर, मैया देख ली कि अरे दूध में तूफान आ रहा है, और उससे पहले लाला का चेहरे को देख रही थी, कि पहले ही हम लोगों ने सुने कि जब कभी मैं मैया ने पुत्र को स्तनपान करा रही थी और दूध पिला रही थी तब अपने पुत्र के मुख मंडलों को देखती थी, क्योंकि उनका चेहरा और स्तन पीते समय दूध पीते समय उनका चेहरा कहे और मंद मुस्कान दिया करते थे बच्चे, तो इस प्रकार की मंद मुस्कान को देखकर मैयाओं ने माताओं ने बहुत ही प्रसन्नता को अनुभव करती थी। मगर अचानक माता का नजर गया चूल्हे पे और देखा तो तभी उफान आ रहा है, तभी माता ने क्षण भर विचार भी नहीं किया ना, मेरा पुत्र अभी तृप्त नहीं हुआ है, पुत्र मेरा बेटा का अभी पेट भरा नहीं है दूध पीकर, थोड़ा सा भी सोची नहीं और उसको उतारी और नीचे रख दिया, और नीचे रख कर तुरंत ही जाकर वो चूल्हे के ऊपर बिठाने वाले ने दूध को उतारने के लिए अतृप्त मुसृज्य, अतृप्त मुसृज्य का अर्थ होता है तृप्त नहीं हुए थे भगवान, यानी लाला ने दूध पी पी कर अब उनका पेट भरा नहीं था, भूखा था और पी रहा था, और बच्चा अगर पी रहा है आधा दूध पिया होगा माताओं को ये अनुभव होगा, अगर आधा पिया हुआ है उसको अगर निकाल दें स्तन से मुख हटा दे तो बहुत रोता है, चिल्लाने लगता है अगर उसको दूसरे काम में लग जाए तो अभी लाला उठा के रख दिया नीचे, और नीचे रख कर वो दौड़ के जाके चूल्हे की दूध को उतारने लगी, और बच्चे को नीचे रख कर माता जैसे दौड़ने लगी चूल्हे की ओर तो चूल्हे में जो दूध बिठा हुआ था ये चूल्हे की दूध क्या सोच रहा है, फिर सोचने लगा दूध, अरे अरे मैंने क्या किया, मेरे सुख के कारण मैया के सुख में बाधा दिया, मैया कितना आनंद ले रही थी लाला के मुख मंडल का दर्शन कर रही थी अपना स्तन पान करा रही थी कितना आनंद में थी, और मेरे सुख के कारण मैंने आत्महत्या करने जा रहा था मैया मेरे को बचाने के लिए लाला को नीचे रख दी, खुद भी दुखी हुई लाला को भी दुख दिया और मेरे को बचाने के लिए आई, दिस मेरा जीवन मैं आत्महत्या नहीं करूंगा करके फिर से नीचे चला गया। और दूध नीचे चला गया मैया, तब तक दूध के पास गया, दूध के पास जा गई, जाकर दूध को नीचे उतारी, नीचे उतार कर। और इस बीच में क्या हुआ, अभी लड़के को क्रोध आया, बहुत ही गुस्सा हो गए। अब क्रोध तो स्वाभाविक है, क्योंकि पहले काम आया था, और ये काम जब आता है काम क्रोध तो ले आता है। महाराज कहते हैं कि काम क्रोध तो काम का अनुज है, उसके पीछे पीछे आया था ही काम है सब क्रोध है, रजोगुण समझो। तो फिर कोई पूछ सकता, अच्छा अगर काम और क्रोध भगवान के अंदर कैसे आ सकता है, ये तो रजोगुण का कार्य है, क्या भगवान के अंदर रजोगुण है? तो कुछ भक्त लोग कहते हैं, हाँ कहते हैं कि आप लोगों को याद होगा कथा कि लाला ने एक बार मिट्टी खाया था, ना, तो उस मिट्टी के मिट्टी खाने की लीला को कुछ लोग सिखा देते हैं, तो मिट्टी को रज कहते हैं, हम लोग कहते हैं रज रज करके, तो रज रज का अर्थ क्या है, रज की मिट्टी, और मिट्टी खाए मतलब क्या है, रज को खाए, तो रज को खाए मतलब रजोगुण को स्वीकार किए भगवान ने। कुछ अगर कहते हैं भगवान ने रजोगुण को क्यों स्वीकार किए, क्योंकि असल में भगवान तो त्रिगुणातीत होते हैं, तीनों गुणों से परे होते हैं, और अभी भगवान सोचने लगे अरे मेरे को आगे जाके बहुत सारे रजोगुणी कार्य करना है, कंस को मारना है, राक्षसों को मारना है, युद्ध में भाग लेना है, महाभारत युद्ध में भाग लेना है, द्वारका बनाना है, पत्नियों के साथ रहना है, ये सारा कार्य जो है रजोगुण का कार्य होता है, इसलिए मेरे पास तो तीनों के तीनों नहीं है, ना सत्व तो है, ना रजो है, ना तमो है, तो मेरे को तो थोड़ा रजोगुण की आवश्यकता है, रजोगुण की। यह सोचकर भगवान ने थोड़ा सा ब्रज की रज को खा लिए, ब्रज की रजोगुण को स्वीकार किए, और जो मिट्टी खाए तभी रजोगुण आया। अभी रजोगुण आया तो ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, तो ताबड़ तोड़ आ गया काम, स्तन्य काम, स्तन की स्तन से निकलने वाले दूध का काम ना हुआ, और काम आएगा तो काम और क्रोध विजय होते, काम से क्रोध उद्भव होता है, जात होता है, तो काम से क्रोध जात हुआ। इस प्रकार से आचार्य अपने कथा में बताते हैं कि इस प्रकार से लाला को क्रोध आने लगा। तो क्रोध आया क्योंकि लाला अतृप्त थे, क्यों क्रोध आया? छह नंबर श्लोक में कहते हैं संजात कोपः स्फुरितार्णाधरम् सदंश दधिमन्थ भाजनम् संजात कोप, अभी उनके अंदर कोप का जात हो गया, कोप अर्थात क्रोध उत्पन्न हो गया, संजात कोप कोप आया, और कोप आया, कोप आया तो अपने लाल लाल सुंदर सुंदर होंठों को दबाए दांतों से। अभी सोचे अच्छा इस घर में मेरा कोई महत्व ही नहीं है, मेरे को कोई नहीं सुनता है, इस घर में मेरी माँ भी मेरे को दूध पिला रही थी तो मेरा पेट ही नहीं भरा है, छोड़ के चली गई, मैंने इतना ऐसा आराम की गोलोक वृंदावन छोड़कर इनके घर में आया दधि माखन दूध पीने के लिए, और इसलिए मेरे को छोड़ के थोड़ा सा दूध बचाने के लिए चली गई, देखिए कितना कंजूस है मेरी माँ। तो मैं ठीक है अगर इसने मेरा थोड़ा सा दूध बचाने गई मेरे को छोड़ दो, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, बहुत नुकसान कर दूंगा मैं इसका, वो सोच रही कि थोड़ा सा दूध बचाएगी मैं इसका बहुत नुकसान कर दूंगा, ऐसे सोच रही है। और बच्चे अगर गुस्सा हो गए तो क्या करेंगे, माँ बाप को ऊपर गुस्सा कैसे उतारेंगे, बहुत सारा चीजें उठाकर पटक कर नष्ट कर देंगे, यही होता है स्वभाव करते हैं। तो भगवान ने अपना होठों को दबाकर, लाल लाल सुंदर सुंदर होठों को दबाकर क्रोधवश होकर उन्होंने इधर उधर देखने लगे, देखने लगे तो ढूंढ रहे थे, कुछ तो करना चाह रहे थे, और देखने लगे तो वहां पे बाजू में एक पत्थर मिला, शिला पुत्र कहते हैं। शिला पुत्र का अर्थ होता है एक पहले मसाला पीसने वाला एक पत्थर हुआ करता था, माओ को मालूम हो रहेगा जो गांव से इनके दिशा है, एक बड़ा सा पत्थर हुआ करता है उसका प्लेन रहता है ऊपर का, और एक छोटा सा पत्थर ऐसे रोल जैसा हुआ करता है, उसमें बहुत सारे मसाला डाल के पानी थोड़ा डाल के उसको ऐसे ऐसे पीसते हैं, उससे मसाला पीसा जाता है, और इस प्रकार का मसाला से कोई अगर सब्जी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी रहता है। मगर आजकल ग्राइंडर मिक्सर मशीन स्विच लगा दिए और स्विच ऑन करके गड़बड़ करते चूल्हा बना दिया, इससे कोई स्वाद नहीं होता है और असली स्वाद नहीं बनता है। तो ये जो छोटा सा रोल जैसा था उसको सीधा पुत्र कहते हैं और ये वो कोने में रखा हुआ था, ये लड़के को दिख गया, तब गया और शिला पुत्र को उठाया, शिला पुत्र को उठाया लाकर इस दधि मंथन ये दही हंडी को दही मटके को फोड़ना चाहिए। और फोड़े तो फोड़े, कैसा फोड़े, ये अचानक लाके पीट नहीं दिए, अपना थोड़ा दिमाग लगाए, अभी भाई इतना चोरी किए तो दिमाग तो होगा ना, कैसा फोड़ना चाहिए किसका क्या है, एक्सपर्ट थे तो चोर करने में तेज थे, तो देखे अगर मैं ऊपर से मारूंगा तो ऊपर की भाग खाली है और खाली बर्तन में जो रहकर कोई चोट या कुछ लगेगा तो आवाज करता है, ऊपर से लगाओ मारूंगा आवाज करेगा और मैया को पता लग जाएगा और वो देख देंगे। तो ये सोचकर इस मटके की पेड़ी में मारे, पेड़ी का होता है नीचे का भाग, नीचे की भाग में क्या होता है दही है तो नीचे का भाग मारने से आवाज नहीं आएगा, अगर मटके में कुछ है और नीचे से मारेंगे तो आवाज नहीं आता। यह सोचकर उन्होंने सीधा पुत्र को लिए बहुत ही चतुराई के साथ इस दधि मटके की पेंडी में मारे और मारे एक छेद कर दिए और कर दिए तो सारा दही फैल गया, चारों तरफ पूरा घर में दही फैल गया और दही फैल गया एक कोने में सीधा पुत्र फेंके। अभी देखे अरे बाबू मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अभी ये छोड़ेगी नहीं भैया आएगी तो मेरे को आज तुम्हें बहुत बड़ा कार्य कर दिया, रोज रोज तो दूसरों का चुराता था, वो लोग कंप्लेन करते थे मगर भैया को मैं मना लेता था, आज उसका ही नुकसान किया, अभी थोड़े ना वो छोड़ेगी, पहले का क्रोध सब आज ही निकाल देगी मेरे ऊपर, ऐसा सुनते अभी उपाय क्या है, अभी यहाँ से भागना पड़ेगा और रहूंगा तो छोड़ेगी नहीं, अगर थोड़ी देर के बाद मिलेगी तो हो सकता है क्रोध शांत हो जाए, ऐसा सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर के बाद, क्योंकि क्रोध होता है ना तत्क्षण आता है उस समय उग्र भाव रूप रहता है, अगर धीरे धीरे समय बीतता जाएगा ना क्रोध भी धीरे धीरे ठंडा पड़ता जाएगा, शत्रु को अगर हम बहुत दिन के बाद मिलेंगे ना उतना हमारा अंदर क्रोध नहीं रहता उसके पास, कुछ कुछ क्रूर लोग रहते हैं अपने रिश्ता भाव को बनाए रखे हुए रहते हैं, मगर ये समय इसके साथ ही क्रोध भी शांत हो जाता है धीरे धीरे, तो सोचें कि अगर यहाँ रहूंगा तो ये आएगी तो मारने लगेगी मेरे पास छोड़ेगी तो मैं यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये दिमाग लगा दिए कि पेंडी में मारने से आवाज नहीं होगा, मगर बच्चे को ये दिमाग नहीं लगा, ये बुद्धि नहीं आया कि इस दही में ही चलते जाऊंगा तो मेरा पैर का निशान बन जाएगा और पकड़ लेगा, ये बुद्धि नहीं था, मगर इतना बुद्धि था कि मटके तो कैसे फोड़ा जाए, महाराज कहते हैं कि चोर जितना भी चालाकी से चोरी करे अपना निशान छोड़ के ही जाता है, तो ये सोच नहीं पाया कि मैं दही में ही चपक चपक करते चलते जाऊंगा छोटे छोटे निशान बन जाएगा भैया पकड़ लेंगे कि मैं इस तरफ गया, ये सोचने के लिए उनके बुद्धि नहीं थी और ये भी नहीं सोचे थे, और वो फिर दही के ऊपर थे क्योंकि चारों तरफ दही फैल गया था, दही तो लिक्विड होता है ना पानी जैसा, तो चारों तरफ फैल गया तो उनको रास्ता भी नहीं मिला और उस दही के ऊपर ही चपक चपक करके चलने लगे और ये दही का निशान छोटे छोटे पैरों का निशान सीधा सीधा ऐसे पड़ते गए, ऐसे देखते रहते दूसरे कमरे में गए। अब दूसरे कमरे में जाके क्या कर रहे हैं, क्रुद्ध होकर लाल लाल होंठों को अपने दांतों से काटते हुए आंखों को नकली आंसू से भरते हुए कंकड़ मारकर बड़ी बड़ी में तोड़ दिए और इसके बाद एक कमरे में घुस गए, एकांत स्थान में जाके सादा माखन खाने लगे और तोड़ देकर जाकर ऐसे चलते चलते एक कमरे में गए, कौन से कमरे में, जिस कमरे में माखन रखा हुआ उसी के ऊपर, अभी तोड़े क्या सोचकर तोड़े, अभी मैं तो इनको बताता हूँ कि कितना नुकसान कर दूंगा, मैं थोड़ा सा दूध बचाने के लिए मेरे को छोड़कर गई है और मैंने अपना गोलोक वृंदावन छोड़ के इसके घर में आया तो इसने मेरे को छोड़कर दूध बचा रही है, इतना लोभी हो गई तो इसको मैं बहुत नुकसान कर दूंगा, ये सोचकर दही का मटका फोड़ दिए, इतना पुराना मटका था हो सकता है जिसका मैं सांस के जमाने का होगा, फोड़ दिए उसको, फोड़कर और दूसरे कमरे में गए, दूसरे कमरे में जाके वो जब पहले का मक्खन था उसको खाने लगे और कैसे खा रहे थे, मिश्राश्रु होता है झूठा आंसू, दुख नहीं हो रहा था वो, तो ऐसे ही दिखावा कर रहे थे कि मैं इतना दुखी हूँ, मेरा कोई भाव नहीं है इस घर में, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरे भूखा पेट को कोई नहीं देखता है, अपना अपना चीजों जुटाने में सब लगे हुए हैं, देखो सब दासियां अपने अपने काम कर रही है, मैया भी छोड़ के गई है, मेरा कोई नहीं सुनता है यहाँ पे, ऐसे सोचकर अपना अपना झूठा आंसू से आंख छल छल करके आंख ऐसे ऐसे करने से पानी बह रहा है, दिशाशु लेकर वो दस मना रहो लेकर वो दूसरे कमरे में गए। दूसरे कमरे में जाकर वहां का माखन खाए, अभी मटका फोड़ा तुम्हारा इतना नुकसान किया और भी नुकसान करेगा। और क्या नुकसान करूंगा, ये बासी माखन खाऊंगा, कल का रखा, अभी तो माखन बना रही थी ना, आज का माखन बना नहीं था ताजा, कल का रखा हुआ माखन था, बासी माखन खाऊंगा और मैं बीमार पड़ूंगा, और मैं जब बीमार पड़ूंगा तो तुम खर्चा करने के लिए मेरे को ब्रज हेल्थ केयर सेंटर में लेके जाएगी। अभी ब्रज हेल्थ केयर सेंटर नहीं था वृंदावन में, आज नहीं ब्रज हेल्थ केयर सेंटर। तो ये कि मेरे को फिर डॉक्टर से बात करके जाएगी, तुम्हारा और भी पैसा खर्चा करना, उतना ही नहीं, और ये दधी खाके खाके बंदरों को भी देने लगा, सब बंदरों को देने लगा। मगर जघांस का अर्थ है खाने लगे और कमरे में घुसकर एकांत में इस प्रकार से माखन को खाने लगे। तो उस समय क्या हुआ, मैया ने इस बीच में वो किचन से वापस आ रही थी, रसोई घर से वापस आई, वापस आके देखी तो दधी मटका फटा हुआ है, चारों तरफ दधी फैला हुआ है और नाला नहीं है। तो वो ये नहीं सोची कि कोई बंदर आ गया हो या कोई बिल्ली आ गया हो गिरा दिया, ऐसा नहीं सोची, उनको सीधा ही दिमाग लगा दी कि नहीं ये तो मेरे लाला का काम, पहले से तो लाला का काम तो मालूम है ना कि कितना अच्छा अच्छा कार्य करता है दूसरे के घर में जाके, और अपने ही घर में अभी सोच रही है भाई अभी यहाँ पे भी शुरू कर दिया इसने, क्योंकि डर के कारण यहाँ नहीं करता था शायद, मगर कभी कभी चुराते थे अपने घर में भी ऐसा कार्य करते थे। एक बार मैया बाहर गई थी और लाने में क्या किए थे, और एक जगह के ऊपर चढ़कर और वो मक्खन की रखा हुआ सीखे में वो मटके में हाथ डाल दिए थे मक्खन में, और मक्खन के अंदर हाथ था डूबा हुआ, तो अभी मैया आ गई, अंदर आ गई घर में, और अंदर आई तो वो बुलाते बुलाते, अरे लाला किधर है बा, मेरे बाप तू किधर है, मैं तुमको ढूंढ रही हूँ, ऐसे चिल्लाते थे। अंदर आई और जैसे ही माँ का आवाज लाला के कान में आया तो वो चल गया, भैया आ गई अभी माखन चुरा रही हूँ, क्या करूँ, हाथ तो निकाल दिया अंदर से, अभी हाथ में मक्खन लगा हुआ है, मक्खन लगा हुआ है, भैया आ गई सामने, आगे तो पूरा डर गए, अभी कुछ तो सफाई देना पड़ेगा। बोले मैया मैया मेरे को जो कंकन पहनाई है ना वो पूरा रगड़ते रगड़ते हाथ जलन हो रहा था, इसीलिए मेरे हाथ को माखन में डुबा के ठंडा कर रहा है। चुराए करते थे कभी कभी अपने घर में भी चुराते थे, मगर इतना बड़ा बड़ा हरकत नहीं करते थे। एक बार कैसे लिए और हाथ में माखन का लोंडा ले लिए और लेके मैया दूसरी जगह थी और लेके वो जाके छुप के खाना चाहते थे, और लेके जा रहे थे तभी एक खंभा था वहां पे, खंभे में उसमें तो जो है हीरे जैसा बहुत सारा कुछ लगा होगा कांच जैसा, और उसमें क्या हुआ तो खुद का ही चेहरा दिखने लगा उसमें, वैसे जा रहे थे देखे तो खंभे में कोई दिख रहा है, रुक गए देखे वो भी देख रहा है इसको, एक भैया बताना मत मैया को, बताइयो मत मैया को, और मैंने माखन मैंने जितना लिया आधा करके तुमको भी दे दूंगा, बताना मत। तो वो भी ऐसा ही बोल रहा है, उसका भी आवाज जैसे घूमता हुआ उसने सुना, अरे तो क्रोध किए उसको तो बताएगा तो देखना क्या करूंगा, तो वो भी ऐसा से हाथ कर रहा है, आश्चर्य ऐसा क्यों हो रहा है। तब तक मैया पहुंच गई और मैया खान में मैया देख रही थी असल में कर क्या रहा है, तो इनकी इस प्रकार की तोतली बोली और बातों को नंकर पर को देखकर मैया ने बहुत ही आनंद ले रही थी, और उस समय वो जाकर पहुंच गई वहां पे, पहुंच गई तो अभी बात को पलट दिए काबड़ तोड़, क्या बोलने लगे, मैया मैया देखिए आपके घर में ना इसने माखन चुराने के लिए आया था, और मैं इसको रोक रहा हूँ तो ये गुस्सा कर रहा मेरे को, देखो इतना माखन लेके जा रहा था। बात लेकर मैया ने बहुत आनंद में अपने लाला को गोद में उठा लेती है, मगर इस प्रकार से दधी भांड फोड़ने का क्रियाकलाप नहीं किया था क्रूर, तो आज किया तो अभी डर गया कि माँ ने मारेगी जरूर मेरे को, यह सोचकर वो वहां से निकल गए थे। और मैया देखी तो तुरंत पता लग गया कि यह जो कार्य है ये लाला का, यही इस प्रकार की नकल फोन कर सकता है और कोई नहीं, और पता लग गया कि देखी कि उधर पैर का निशान है, पैरों का निशान छोटी छोटी निशान बनते हुए दूसरे बताए, और मैया ने क्या की अभी सोची ये तो ज्यादा ही उद्भव होने लगा है, अगर अभी से मैं इसको रोकूंगी नहीं सुधारूंगी नहीं तो आगे जाके बहुत कुछ करेगा, कभी माखन चुरा रहा है सामान बर्बाद कर रहा है, आगे आगे जाके और भी कुछ चुराएगा, डकैती करेगा, किसी का बहुत अच्छी इत्यादि को लेकर चला जाएगा। इस प्रकार से हम सोचकर मैया ने सोची कि आज इसको तो कुछ दंड देना ही चाहिए। यह सोचकर एक हाथ में छड़ी ली और लेकर उस छड़ी को पीछे छुपाती हुई वो उस पैरों की निशान को देखते देखते गई। वहां ये क्या कर रहे थे हमारे लाला जी, ये क्या कर रहे थे? माखन खा रहे हैं मगर अंदर डर है, क्रोध है कि मेरे को छोड़ के चली गई, दुख है कि मेरे को मेरे भूख के कारण ये देख भी नहीं रहा है कोई, और मृषाश्रु है, झूठा आंसू बहा रहे हैं, और उन्होंने उनका जो नेत्र है किस प्रकार का नेत्र है, वो देख रहे थे मगर डर के मारे इधर उधर देख रहे। चोर चोर विषम विषम किते क्षण, चोर विषम किते क्षण का मतलब है जैसे कि कोई चोरी किया हो और कहीं छुपा हो तो ऐसा ऐसा देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। वैसे यहाँ पे चोरी करके तोड़ के गए माखन खा रहे हैं और माखन खा के बंदरों को खिला रहे हैं, और डर इधर अंदर क्या है कि बहुत बड़ा अपराध किया हूँ, अभी वो मैया आती होगी तो आ तो नहीं रही है ना, कहीं को इधर उधर देख रहे और बंदरों को खिला रहे हैं। बंदरों को क्यों खिला रहे? वो पहले से आदत पड़ चुका है कि बंदरों को दोस्त बना लिए हैं, बंदरों का दोस्त बने। और भी आचार्य कहते हैं क्योंकि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र को ये बंदरों ने बहुत मदद किए थे, बिना खाए पिए कुछ खाना नहीं मिलता था और उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं हुआ करता था, और जानवर होकर बंदर होकर भगवान का इतना भक्ति था कि इतना प्रेम था कि भगवान को मदद करने के लिए बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक राक्षसों के साथ युद्ध किया करते थे, और इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं था तो हाथों से मुष्टियों से और पत्थरों को उठाकर और ये वृक्षों को उखाड़कर युद्ध करना भी ताकत लगाना पड़ता था, और वृक्षों को उखाड़ने के लिए ताकत लगाकर वृक्षों को उठाकर राक्षसों को मारा करते थे, इतना मेहनत किए थे, मगर भगवान रामचंद्र कुछ उनको नहीं दे पाया क्योंकि उस समय भगवान रामचंद्र वनवासी थे ना, राजा नहीं थे, तब कभी कुछ खाने के लिए नहीं दे पाए। तो भगवान सोचते कि मैं इन लोगों को इतना काम कराया था मगर काम का फल नहीं दिया था इन लोगों को, चलो भाई अभी मौका है तो उनको पेट भर के माखन तो खिला दूं कम से कम, ये सोचकर भगवान ने बंदरों को माखन खिला दिया। तो आठ श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनु खड़ांकर परिंद व्यवस्थितम मरकाय कामिनीं दरकं सतीशितिष्ठितम् हयं रमोचार विसंकिते क्षणं निरीक्ष पश्चात् सुतमागमं गच्छन्। कहते हैं कि ऊखल के ऊपर चढ़ा हुआ है और सीखे से माखन निकाल कर खा रहा है, और उसका दृष्टि जो नेत्र है चोरों की भांति इधर उधर घूम रही है, देख रहा है, मरकाय यानी मरकटों को बंदरों को खिला रहा है, इस प्रकार की स्थिति है। मगर इस प्रकार की स्थिति में उन्होंने माँ को एक छड़ी लेकर आते हुए देख लिया, माँ छिपके छिपके आ रही थी, छड़ी को पीछे रखी थी मगर फिर भी लाला का दृष्टि एक छड़ी के ऊपर गिरी, छड़ी को देख लिया लाला ने, निरीक्षण पश्चात सुतमा गच्छन्। उस समय कृष्ण मसाला पीसने वाली लकड़ी के ऊपर उखल के उलट कर उस पर बैठ भजे हुए थे, मक्खन तथा दही जैसा दूध की बनी वस्तुओं को अपनी इच्छा अनुसार बंदरों को बांट रहे थे, चोरी करने के कारण चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कहीं उनका माता आकर उन्हें डांट में मार डांटे नहीं। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वे चुपके से पीछे से उनके पास पहुंच गई, तो पीछे पीछे से माँ ने और धीरे धीरे आ रही थी, जोर से भी नहीं आ रही थी क्योंकि अगर चलते चलते आ जाएगी तो माँ के पैर में जो पायल है उस पायल की आवाज की वजह से पता लग जाएगा बच्चे को, क्योंकि तो पायलों की आवाज को सुनने में और इसका मधुर लेने में पहले से ही अभ्यास है, बचपन में जब रहते थे तभी गोपियों का पायल का आवाज सुनकर उनके पीछे भागते थे, तो पायल की आवाज को जल्दी पता लग जाएगी तो कोई स्त्री आ रही है मैया ही होगी चलती, इसलिए पूरा पैर को दबाते हुए धीरे धीरे से मैया ने अपने छड़ी को पीछे रखकर वो आ रही थी पीछे से। तामत यष्टिम प्रसमिक्ष सत्वर सतो वरुह्य अपसार भीतव गोप्तन्य धावन यमात योगिनम शोमं प्रवेशुं तपसेरितं मनः। तमात यष्टिम प्रसमिक्ष सत्वर तमात यष्टिम, माता यशोदा को हाथ में छड़ी को लेकर आते हुए इस प्रकार की स्थिति को इस बच्चा लाला ने देख लिया, और जैसे ही देख लिया अत्यंत घबरा गए, बहुत ही डर गए कि माँ ने अभी मेरे को मारने के लिए आई है, क्योंकि आज तक माँ ने कभी अपने हाथ में छड़ी नहीं दी थी मारने के लिए, और आज छड़ी लेके आई मतलब कुछ सिचुएशन डेंजर है, अभी कुछ करना पड़ेगा। तो तब तो अवर्य अपससार, तब तो अवर्य, अवर्य का अर्थ होता है उतर कर, अपससार होता है, अपससार का अर्थ होता है चले भाग, और चले भाग यानी भागना है तो थोड़े ना धीरे उतरेंगे और कूद गए होंगे, उखर ऊपर से कूदे और भाग चले वहां से। गोप्य ध्यापन में यमात्म योगी नाम श्री वसंत कहते हैं, जिन भगवान को योगियों ने अपने योग बल के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ मन से भी पकड़ नहीं पाते हैं, स्मरण मात्र नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, इस प्रकार के भगवान को पकड़ने के लिए गोपी ने पीछे से भाग रही है, इस प्रकार के भगवान को पकड़ने के लिए। श्याम प्रवेश तप सेवित मन, तप सेवित मन, सेवित मन का अर्थ होता है तप के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ मन, तेज किया हुआ मन, एकाग्र चित्त रखने वाला, तब करते हैं किसी लिए मन को एकाग्र करने के लिए, मन को एकाग्र करके क्या करेंगे कि भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान को मन में पकड़ेंगे इसके लिए, मगर ये भी योगियों के द्वारा नहीं हो पा रहा है, इतना तप करने के बावजूद भी भगवान भक्ति या भगवान की स्मरण नहीं हो पा रहा है, या भगवान के ब्रह्म देश में भी नहीं जा पाते योगी लोग। इस प्रकार के भगवान को पकड़ने के लिए गोपी ने भगवान के पीछे पीछे दौड़ दी, क्यों, क्योंकि उस समय बच्चा डर गया, डर के मारे उखल उखल से नीचे कूदे और नीचे कूद कर और भागने लगे। तो अवरुह अपससार, अवरुह का अर्थ होता है उतरना, उतर कर, अपससार का अर्थ होता है भागने लगे। अब क्या हो रहा है, अब भागे तो क्या होगा, उनके पीछे पीछे मैया ने भागने लगी छड़ी को लेकर, बोली होगी अरे लाला रूप मारूंगी नहीं रूप, नहीं तो ऐसे भी बोली होगी अभी दिखाती हूँ तेरे को कितना नटखट हो गया तूने, आज तो तेरे को मैं दंड देके ही रहेगी, क्योंकि इस प्रकार का नटखट तो अगर बढ़ता ही बढ़ता रहेगा तो आगे जाके सिर दर्द बन जाएगा मेरे लिए, और सभी लोग बोलेंगे कि देखो इसको सुधारती नहीं है, माँ ने राजा के घर के बेटा है करके इतना लाड़ प्यार मिल गया कि किसी का सुनता नहीं है, इस प्रकार का सारा बात मेरे को सुनना पड़ेगा, इसीलिए मैं तेरे को अभी से ही सुधारूंगी और तेरे को सुधरना पड़ेगा, इस प्रकार सोचकर मैया ने उनके पीछे भागने लगी, दौड़ने लगी छड़ी को लेकर, और भगवान अत्यंत भीतवत, भीतवत का होता है भय से, अब लिखे ना अपससार भागने लगे, किस प्रकार भागने लगे, भीतवत, भीतवत का होता है अत्यंत भयभीत होगा, डर गए हैं भगवान मेरा मैया ने मारेगी मेरे, देखिए कैसा हंसी की बात है, आश्चर्य की बात है, जिन भगवान को स्वयं काल यमराज भी डरते हैं, वो कथा आप लोगों को कल भी बता रहा था मैंने कि अजामिल की स्टोरी से क्या पता लगता है कि अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए थे तो विष्णुदूत लेने नहीं दिए, यमदूत जाकर पूछे कि हम लोगों को ये चार सुंदर सुंदर लोग क्यों रोक दिए चार हाथ पहले, यमराज कहते हैं कि देखो भाई आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि अगली बार ऐसा गलती मत करना, न क्या गलती, न हमसे भी बढ़कर एक नियंता है वो है भगवान विष्णु, और कोई व्यक्ति अगर एक बार भी अपनी जिंदगी में जीवन में अगर हरिनाम का उच्चारण किया है अपने मुख से और पंडित और तिलक या अगर किसी ने धारण किया है, इस प्रकार के व्यक्ति के पास गलती विषय भी मत जाना, यमराज अपने अनुचरों को ये निर्देश देते हैं, यमराज भी भय करते हैं, यमदूत भी भय करते हैं, इस प्रकार से भगवान, जिस भगवान के भय के कारण सूर्य अपने समय पर रुक जाते हैं दिन होता है, और जिनके भय के कारण चंद्रमा रात को उठकर अपनी शीतलता को प्रदान करती है, ये हवा चल रहा है सृष्टि और इंद्र देव वरुण देव इत्यादि अपने अपने नियत कार्यों को ठीक रूप से कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार की भगवान डर रहे हैं, जो कि सारे लोगों को डराते हैं या सारे लोग जिनके डर के मारे काम करते हैं वो फिर किसी को डर रहा है, एक आश्चर्य के बात है, वो डर के मारे मैया की छड़ी को डर रहे हैं और डर के मारे, ये सब आश्चर्य है, पहले तो ये आत्मा राम है आत्मा में आनंद लेने वाले हैं और हमेशा कभी आपका काम है, आपका काम का करता है, कभी भी उनको किसी दूसरे वस्तु का कामना नहीं होता, उनकी इच्छा मात्र को संपूर्ण होता है। इस प्रकार के व्यक्ति को भूख लग लक्ष्मी पति होकर चुरा रहे थे और भूख लगने लगा, काम आने लगा, क्रोध आने लगा, ये सब आश्चर्य की बातें हो रहा है। ये सब आश्चर्य के पीछे एक ही कारण है, माँ के पास चले प्रेम। प्रेम के द्वारा भगवान बन जाते हैं, वही हम इस श्लोक इस अध्याय का सार है जिसको कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रस्तुत करना चाहते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है भक्ति के द्वारा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, केवल एकमात्र वस्तु है, वो है भगवान की भक्ति, जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दसवें श्लोक में कहते हैं, पीछे पीछे भागने वाली, अनु का अर्थ होता है पीछे, अंचमाना तो पीछे जाने वाली, जैसे कि धावमाना का अर्थ होता है दौड़ने वाली। श्रीमती राधारानी का नाम इस प्रकार से पड़ा था, गोकुल में जब प्रकट हुई थी और तुरंत ही दौड़ने लगी, राजस्थान में प्रकट हुई और तुरंत दौड़ने लगी, जाकर फूल चुनकर भगवान के लिए आए। राजस्थान का पहला शब्द रा और दौड़ने लगी, उसको कहते धावमाना, राजस्थान में धावमाना, धावमाना नहीं दौड़ने लगी थी, वो धा शब्द को लेकर राधा बना था, तो धावमाना। उसी प्रकार से यहाँ पे अनुवंचमाना, अनुवंचमाना का अर्थ होता है अनु का, अनु का अर्थ होता है पीछे, अनुशीलन का तो ये शब्द आता है ना भक्ति रसामृत में, अनुशीलन, अनुशीलन का अर्थ होता है पीछे पीछे कार्य करना, शीलन का अर्थ होता है कार्य करना, यहाँ पे अनुवंचमाना का होता है पीछे पीछे जाने वाले, पीछे पीछे जाने वाले कौन, जननी मान यशोदा मैया बृहत सलभ श्रोणी भरत प्रांत गति, वो दौड़ रही थी पीछे पीछे, मगर उनके स्थान और अपना शरीर का भार के कारण उनका जो दौड़ना है वो मंथर गति हो रहा था, यानी शिथिल पड़ रहा था, और लाला के जैसा चटपट चटपट नहीं भाग पा रही थी। वो तो पतला कमरा वाला कमर वाला है, बहुत ही पतला सा है, पतला शरीर है, कुछ भार नहीं है, चटपट चटपट भागते जा रहे थे और मैया उसके पीछे नहीं भाग पा रही थी, धीरे धीरे भाग चल के जा रही थी, क्योंकि माँ का शरीर और माँ का स्तन जो है वो भार होने के कारण उनका गति जो है सुमध्यम धीरा धीमा पड़ गया था। जब विश्रम शीत केश बंधन, और दौड़ते दौड़ते माँ का जब केश बंधन है, यानी जो बेड़ी या कुछ भी बाल को जिस प्रकार से सजाते हैं, केश बंधन बंधा हुआ बाल, वो खोल गया था। विश्रमसित का अर्थ होता है खोल लेना, केश बंधन और च्युत प्रसूना भूत परास्मृशत, यानी उनके और माँ के बालों से जो फूल है वो झड़के झड़कर पूरे रास्ते पर गिर गया। इस प्रकार का माँ लाला के पीछे कृष्ण को पकड़ने के लिए भाग रही थी, कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझली पतली कमर वाले माता यशोदा को अपने चार मंद करने पड़ी, तेज से पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल हो पड़े और उनके उनमें लगे हुए फूल पीछे पीछे गिर रहे थे, फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुए। माँ ने पीछे दौड़ रहे थे, बाला नाटक कर रहे थे, वो भाग रहे थे तेज से और धीरे, फिर कभी कभी धीमा पड़ जाते थे, और मैया को लग रहा था कि मैं अभी पकड़ लूंगी इसको, ऐसे हाथ बढ़ाती थी और भाग रहे थे जोर से, उसको लगता था कि अभी पकड़ लूंगी लाला को, तो अभी तो और भाग जाते थे, तो मैया सोचती थी अभी तो पकड़ लूंगी, तो नजदीक ही का दूरी हुआ करता था, और मैया सोच रही थी अभी पकड़ लूंगी अभी पकड़ लूंगी, ऐसे सोचकर उसके पीछे जाने लगे, और जाने लगी तो ये इतना नटखट था कि अगर थोड़ी देर भागता अगर रह जाता तो होता, मगर रुका नहीं, पूरा घर पे पूरा कोना कोना घुमाया फिर घर के बाहर निकला, बाहर निकल के पूरा गलियों में घूमने लगा, अभी गलियों में पीछे भी, अभी माने एक बार पीछे पड़ी कभी सोची इतना दूर पीछे पड़ी कभी इसको छोड़ूंगी नहीं, इतना परेशान किया मेरे को सताया, रुक जाता था कुछ नहीं करते, अभी इतना सताया था इसको छोड़ूंगी नहीं, पकड़ के ही वो भी जीती हो गई मैया और दौड़ने लगी पीछे पीछे, दौड़ रही है लाला भी भाग रहा है, सभी लोग देख रहे हैं गलियों में भाग रहा है लाला, और सभी ग्वालमन और गोपियां बच्चे से देख रहे आज क्या हो गया माँ बेटों को इतना क्रोधित क्यों हो गई मुझे रोज रोज हम लोगों ने उलाना लेके जाते थे कंप्लेन करते थे तभी भी कुछ नहीं कहते थे कोई नहीं लेती थी और दूध पिलाने लगती थी जान दो राधा में दूध मक्खन खाया तुमको जितना तुम्हें मेरे घर से लेना ऐसे कहने वाली माता आज इसने किया क्या है कि इतना क्रोधित हो गई थी झड़ी देखो उसको किसी को भाग रही है और ये दादा तो चारों पर भाग रहा है लाला पूरा ना उधर गोकुल में गली 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 में घूमने लगे मैया भी इसके पीछे पीछे पड़ी थी बहुत देर भागने के बाद भगवान ने पकड़ में आ गए पकड़ ली अंततः पकड़ ली कहते हैं फिर भी अपने पुत्र कृष्ण की पकड़ में सफल हो गए भगवान सोचेंगे अभी बहुत हो गया अभी बस हो गया ज्यादा नहीं दौड़ाना चाहिए भगवान दौड़े क्यों वहां से कहते हैं मतलब कि अगर कोई व्यक्ति मेरे को बाकी दूसरे कामों में व्यस्त हो जाता है तो मैं उसके आंखों से ओझल हो जाता हूं यानी मैं कभी उसको प्राप्त नहीं हो सकता कहां प्रदर्शित कर रहे हैं मां ने डायरेक्ट सेवा कर रही थी मैया को दूध पिला रही थी और वहां पे चूल्हे के ऊपर बिठाया और दूध पिलाने के लिए लाला को नीचे रख दिया लाला सोचने लगा था अगर मेरे को दूसरे छोटे छोटे कार्यों में व्यस्त रहता है तो मैं कभी प्राप्त नहीं करता इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ इसके पास से ये सोचकर मन से भागने लगे मगर मैया गई अगर कृष्ण का सेवा डायरेक्ट कर रही थी तो फिर उसने लाला को छोड़कर वो दूध बताने क्यों गई दोनों लाला के लिए ही सेवा था ये डायरेक्ट दूध पिला रही थी अपने स्तन से और वहां पे दूध उबल रहा था दूध कभी के लिए उबल रहा था बाद में लाला के लिए दधी और माखन बनाया जाएगा क्या दूध पिएगा और अभी स्तन में दूध पिला रही थी मैया सोच रही होगी कि मेरा तो ये स्तन का दूध है खुद का दूध ये कहीं भागने वाला नहीं है मैं अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद भी इसको पिला सकती हूँ मगर ये जो चूल्हे में उबल रहा है ये दूध अगर ये उबल कर उफान आकर चूल्हे पे भी घुस जाएगा तो दोबारा इतना सुंदर पद्मिनी गाय पद्मगंधा गाय का दूध ये प्राप्त नहीं होगा तो मैं उसको बता देती हूँ ताकि थोड़ी देर में बाद भी मैं उसको दूध पिला सकती हूँ ये सोचकर लाला की ही खुशी के लिए दूध बचाने के लिए मगर ये उसको नहीं सोचा कि मेरे को क्यों छोड़ के गई और मेरे को छोड़कर दूसरे कार्य में व्यस्त रहता है तो मैं आंखों से उछल हो जाता हूँ तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे कृष्ण को छोड़कर कृष्ण की संतुष्टि को छोड़कर कृष्ण भक्ति को छोड़कर अगर हम कोई भी दूसरे कार्य में भले ही वो घरेलू हो सांसारिक हो या अपना काम काज हो इत्यादि में अगर हम फंसते हैं तो उस समय भगवान हमको प्राप्त नहीं होगा तो क्या तो फिर कैसे करें इसीलिए कृपा जी ने हमेशा हम लोग कथा जब में सुनते हैं लेक्चर्स में कि हर जगह में हर कार्य में कार्य के केंद्र में हमको भगवान को रखना चाहिए मैं कर रहा हूँ नौकरी या घर का परिवार का भरण पोषण पालन या किसी के साथ मेरा संबंध है फिर इसके पीछे भी मेरे को कृष्ण की संतुष्टि की थी इस प्रकार से भाव से अगर हम करें तो उस समय हमको भगवत प्राप्ति के लिए रास्ता मिल सकता है इसे भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मेरे को छोड़कर इसने थोड़ा दूर बचाने के लिए गई दूसरे कार्य में गई तो मैं इसके आंखों से उछल हो जाऊँ और भाग लेना और ज्यादा दूर से भी भागे भागे कभी देखिए तो माए भैया ने इतना दूर भागते भागते बहुत ही परिश्रम करने होगी थक गई होगी अभी हम इसको पकड़ने आ जाना चाहिए यह सोचकर भगवान ने पकड़ने आए भगवान ने पहने थे अलंकार पहने थे गले में तो भैया ने पीछे से उनको उस अलंकार इत्यादि को पकड़ लिया अभी पकड़ने आ गए पकड़ में आ गए तभी क्या कहने सुखदेव गोस्वामी कृता वसंतम प्ररुदंतम अक्षिणी कसंतमंगम स्वपाणिना माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण अत्यधिक डर गए और उन्होंने अपने अपराध स्वीकार कर लिया पकड़ ली और दृष्टि डाली और मैया ने जैसे ही पकड़ लिया तो और तेज रोने लगे किस प्रकार से रोने लगे थे ऐसे धक्सक धक्सक होकर, ऐसे रोते हैं ना बच्चे जब रोते हैं, तब ऐसे रोते हैं कि उनका जो कंठ है ये पूरा रेखा युक्त हो जाता है, यानी ऐसा जो चमड़ी है रेखा युक्त, उसको सत्यव्रत मुनि लिखते हैं ना मुश्वास कंपा रेखा युक्त कंठम। तो ये जोर जोर से धक धक होकर रोने के कारण ये जो कंठ है बाबा का वो त्रिरेखा युक्त हो गया, सब से तीन रेखा प्रकाश हो गया था, और इस प्रकार की गले में लटका हुआ मोती का माला जो है बहुत सुंदर दिख रही है। अपने दामोदर अष्टकम, दामोदर अष्टकम का व्याख्या भी आज कमल रसन पर दोपहर को किया, बहुत अच्छा उसके भाव भी है, उसके ऊपर भी प्रयास। तो फिर माता ने जैसे ही पकड़ लिया लाला को तो और डर गया, अभी तो मेरे को मारेगी छोड़े तो नहीं इसने, क्योंकि हाथ में लकड़ी ली हुई है, और जोर जोर से डर के मारे रो लिया, और इस प्रकार से रोता हुआ चेहरे को मैया ने, और क्यों रो रहे थे दादा, वो देख रहे थे, जब कभी भी लाला ने रोते थे ना तो मैया क्या करती थी, अरे बच्चा रो रहा है उसे गोद में उठा लेती थी और उठाकर दूध पिला लेती थी, आज भी ऐसे ही सोच रहे थे, अभी मैं जोर से रोऊंगी तो मैया सोचेगी चलो अभी क्या है बच्चे को डराएगी, गोद में उठा लेगी और दूध पिलाएगी, क्योंकि मैया हमेशा कभी रोने नहीं देती थी बच्चे को, हमेशा प्यार करती थी, तो ये आदत था, तो लाला सोच रहे थे मैया मेरे को उठाएगी और गोद में लेगी, ये सोचकर और जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, मगर जोर जोर से रोने लगे, मगर आज भगवान के रोना माँ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया, माँ का मन पिघला नहीं, क्रोध शांत नहीं हुआ, वो तो हट बैठी थी, जिद कर बैठी थी कि आज तुमको दंड दूंगी ही दूंगी, मगर इस प्रकार से रोने से देख कर मैया सोची चलो ये छड़ी देकर इतना रो रहा है बहुत ही डर रहा है, ज्यादा नहीं डराना चाहिए उसको, छड़ी को नीचे रख, छड़ी को नीचे रख दी, थोड़ा सा सोचे होंगे थोड़ा सा ठंडक मिला, छड़ी से मार नहीं पड़ेगी अभी, ऐसा सोचे होंगे, और पकड़ ली, पकड़ कर उनके आंखों से आंसू आ रहा था, माता यशोदा ने अपने सुंदर पुत्र को पकड़कर अपने एक हाथ को पकड़कर धीरे धीरे से डांटना शुरू की, इस प्रकार से डांटना शुरू की, और कल हम लोगों ने देखेंगे कि किस प्रकार से माता का डांट क्या डांट रही है और डांटते हुए किस प्रकार से भगवान लाला को बांधी। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, यशोदा दामोदर की जय। कल हम लोग इस दामोदर लीला को समापन करेंगे, माता यशोदा को इस प्रकार से डालते हैं। Gracias.